दोस्तों, SBS हिंदी पर आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। आजकल मेडिकल साइंस ने काफी प्रगति की है और शायद ये इसी का परिणाम है कि एक नया ट्रेंड प्रचलित हुआ है जिसमें बेबी जब बॉर्न होता है, बच्चा जब पैदा होता है, तब उसकी कोड को संभाल के रखने का महत्व बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भविष्य में किसी भी गंभीर बीमारी के सामने सुरक्षित इलाज पाने के लिए बच्चे की कोड को संभाल के रखना चाहिए। चलिए जानते हैं क्या है ये कोड बैंकिंग और इसके क्या फायदे हैं। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेक डॉक्टर बोस्की शाह। डॉक्टर बोस्की, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद हरिता। सुनने वाले सभी भाई और बहनों को नमस्कार।
डॉक्टर बोस्की, सबसे पहले आप ये बताइए कि बच्चे की जो कोड होती है उसे सेव करने का महत्व क्या है, क्यों की जाती है, क्यों ये ट्रेंड आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है?
हरिता, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे बॉडी में स्टेम सेल की क्या इम्पोर्टेंस है। बेसिकली हमारे बॉडी में सारे ब्लड सेल्स, अगर रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, मेनली अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये रक्त कण बॉडी में बोन मेरो में प्रोड्यूस होते हैं। ये सेल्स बनते हैं स्टेम सेल्स में से। अगर किसी वजह से स्टेम सेल्स को हमें सिंपल भाषा में कहूँ तो मार देना पड़े तो बॉडी में ब्लड प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। तो इस वजह से अगर जरूरत पड़े, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए कि जिसमें सारे स्टेम सेल्स को मार देना पड़े, तो फिर बोन मेरो किसी और रिलेटिव या किसी और पर्सन का लेके ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तभी वो पर्सन जिंदा रह पाएगा। तो ये बोन मेरो ट्रांसप्लांट जब कराने की बात आए तो दो तीन तरीके से हम मैचिंग डोनर ढूंढ सकते हैं। एक है कि हमने अगर वो पर्सन जब भी बर्थ हुआ, उसका जब जन्म हुआ, तब उसके अम्बिलिकल कोर्ड में से जो कोड ब्लड स्टोर होता है उसी को हम अगर सेव करें तो उसमें स्टेम सेल्स होते हैं। ये बच्चे के लिए परफेक्ट मैचिंग होता है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर इस बच्चे का कोई सिबलिंग हो, भाई या बहन, तो उसमें से कभी कभी हमें मैचिंग डोनर मिल जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि हम पब्लिक रजिस्ट्री में सर्च करके मैचिंग डोनर ढूंढे। पब्लिक रजिस्ट्री में सर्च करना कभी कभी सालों लग जाते हैं, कभी मैचिंग डोनर नहीं मिलते, और अगर मैच डोनर का हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया हो तो बॉडी उस डोनेशन को एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट करता है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स होती है। अगर आई थिंक सबसे पहले अगर हम सोचे कि ऐसा कब होता है कि जब हमें सारे स्टेम सेल को मार देना पड़ता है, तो उसका एक कॉमन एग्जांपल है कि ऐसी कीमोथेरापी लेनी पड़े ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ऐसे टाइप के डिजीज के लिए, तो सारे स्टेम सेल्स को बॉडी में से मार देना पड़ता है। इस स्टेज पे अगर बच्चे के स्टेम सेल प्रिजर्व्ड हो तो वो उस टाइम पे हम यूज कर सकते हैं, वो उसके लिए परफेक्ट मैचिंग होगा और वो रिजेक्ट नहीं होगा। सो ये मेन इम्पोर्टेंस है कोड ब्लड स्टोर करने के पीछे, ये बेसिक रीजन है।
डॉक्टर बोस्की, तो ये कोड कितने समय तक सेव होती है और इसे किस तरह से किया जा सकता है?
ओके, सो कोड ब्लड स्टोरेज है वो 25 आजकल बैंक्स, कोड ब्लड बैंक्स 25 साल तक स्टोर करने का ऑफर कर रहे हैं। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। एट द टाइम ऑफ बर्थ अम्बिलिकल कोड एक बार बच्चे का क्लैंप कर दे तो बाकी जो अम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटा जो अभी भी मम के साथ अटैच है उसमें कोड ब्लड स्टोर उसमें जो भी कोड ब्लड होता है उसको एक सिंपल सी नीडल की प्रोसीजर से, बेसिकली नीडल से वो एक बैग में कलेक्ट करते हैं और उसको प्रोसेसिंग मेथड्स बैंक में जाके वो सब प्रोसेस करके वो फ्रोज करके स्टोर कर सकते हैं सालों तक।
तो जब ये स्टोर करने की हम प्रोसेस करें या फिर हम डिसाइड कर लें कि हमारे बच्चे का कोड हमें सेव करना है, तो इसके लिए सलाह कौन दे सकता है, कहाँ से रेफरेंस मिल सकता है और कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में हमें सावधानी रखनी चाहिए या केयरफुल रहना चाहिए?
श्योर, तो इस बारे में आपको सलाह, आप अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पब्लिकली डिलीवर कर रहे हो तो पब्लिक हॉस्पिटल में जब भी आप डॉक्टर से मिल रहे हो उसके साथ आप बात कर सकते हो। बहुत सारी पब्लिक हॉस्पिटल्स में कोड ब्लड बैंकिंग के लिए रिसर्च नर्सिंग नर्सेज ऑल्सो दे आर अवेलेबल, और कुछ मटेरियल भी वो लोग पैम्फलेट्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं जो आप पढ़ के डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये करना है कि नहीं। और अगर आप प्राइवेटली बेबी डिलीवर कर रहे हो तो आपके ऑब्स्टेट्रिशियन है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं।
दोस्तों, डॉक्टर बॉस्की के साथ हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा जिसमें हम उनसे पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कोड बैंकिंग करना हो तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और साथ ही में जब कोई व्यक्ति इस विषय पर निर्णय लेता है तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपकी इजाजत लेते हैं, अगले सप्ताह फिर मिलूंगी इसी विषय में आगे बातचीत और अधिक जानकारी के साथ। डॉक्टर बॉस्की, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद हरिता।